नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी परनायक ने विश्व रेडक्रॉस दिवस के विशेष अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश राज्य शाखा के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों सहित मानवता की सेवा में समर्पित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 के परीक्षा केंद्र राज्य के बाहर आवंटित किए जाने के मुद्दे को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रिम्स नाहरलगन ने राज्य में पहली बार रीनल आर्टरी सीरियो एन्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। लगभग 2 दशकों बाद पहली बार पासीघाट स्थित दाइंग ईयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी गाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी परनायक ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश राज्य शाखा के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों सहित मानवता के सेवा में समर्पित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष की थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव और यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी विश्व भर में रेड क्रॉस आंदोलन की करुणा, एकजुटता और निस्वार्थ सेवा की भावना को और सशक्त करेगी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वैच्छिक सेवा जैसे महान आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 के परीक्षा केंद्र राज्य के बाहर आवंटित किए जाने के मुद्दे को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में श्री खांडू ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि अरुणाचल प्रदेश के बड़ी संख्या में छात्रों को अन्य राज्य में कई बार बहुत दूर स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को भारी असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के विशेष भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संपर्क व्यवस्था और अविकसित परिवहन अवसंरचना के कारण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए लंबी दूरी की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से परीक्षा केंद्रों के आवंटन पर पुनर्विचार करने तथा अरुणाचल प्रदेश के भीतर पर्याप्त CUET केंद्र स्थापित करने या कम से कम नजदीकी और सुलभ स्थानों पर केंद्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रिम्स नाहरलगन ने राज्य में पहली बार रीनल आर्टरी स्यूडो एज्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री चौना मेन ने ट्रिम्स को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये उपलब्धि अरुणाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज प्रगति और राज्य के लोगों तक उन्नत, न्यूनतम आक्रामक तथा जीवन रक्षक उपचार सुविधाएं पहुंचाने के लिए डॉक्टरों एवं चिकित्सा टीमों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीति के इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 में बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही है। यूडीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। लगभग 2 दशकों बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित दायिंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर एक कैमरे में कैद की गई है। ये बाघ अभयारण्य में हाल ही में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसे अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट के तकनीकी सहयोग से संचालित किया गया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर केएमपी अहतर ने कहा है कि बाघ की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और संरक्षण प्रयासों के सतत प्रभाव को दर्शाती है। अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण में गंभीर रूप से संकटग्रस्त चाइनीज पेंगोलिन तथा दुर्लभ और लुप्तप्राय हिस्पट हेयर की भी उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे अभयारण्य के नदी तटीय घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी महत्व की पुष्टि होती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज सर्वाधक तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी है। श्री मोदी ने कहा है कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर जुड़े 2 महत्व आयोजनों में शामिल होने और उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
आकाशवाणी ने राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी भी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन में को रवाना किया।
आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।